आदित्य अपने डैड की बात अच्छे से समझ चुका था। असल में नैना और अधिराज के बीच कभी ठीक से निभ नहीं पाई थी। भले ही उनकी लव मैरिज थी, मगर शुरू से ही दोनों के रिश्ते में खटास रही। इसीलिए धर्मपाल जी अब चाहते थे कि जैसे मनाल आदित्य के लिए बिल्कुल परफेक्ट रही, वैसे ही निशा के लिए भी कोई ऐसा जीवन साथी मिले, समझदार, स्थिर और सच्चा। अपने डैड की बातों के बाद आदित्य को पूरा यकीन हो गया था। उसने जो निशा और मेहर को लेकर सोचा था वो बिल्कुल सही था। अब वो इस विषय में निशा से खुलकर बात करना चाहता था, क्योंकि मेहर को कामयाब होने के लिए अभी वक्त चाहिए था। उसे कई जिम्मेदारियों को पूरा करना था। आदित्य को बस एक ही डर था, कहीं निशा की जल्दबाजी उनके रिश्ते को खराब न कर दे। निशा धर्मपाल राजवंश की बेटी थी, बिल्कुल लाड प्यार में पली, हर नखरे उठे हुए। मेहर को उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक खुद को खड़ा करने के लिए समय चाहिए था। निशा को वो वक्त देना पड़ेगा, ये बात मेहर खुद भी अच्छी तरह समझता था। इसके साथ साथ उन दोनों को फिलहाल अपने रिश्ते को सीक्रेट भी रखना था, क्योंकि ये उनके प्रोफेशनल माहौल के लिए ज़रूरी था। मेहर समझदार लड़का था, लेकिन निशा थोड़ी भावुक और जल्दबाज थी। बस यही सोचते हुए आदित्य अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसने देखा मनाल बाथरूम से बाहर आ रही थी, कपड़े चेंज कर चुकी थी। अरे माना, आदित्य मुस्कुराकर बोला, जो नाइटी मैं तुम्हारे लिए लाया था तुम उसे कब पहनोगी? हमेशा वही बोरिंग लाउड सूट पहनती रहती हो, एक बार तो पहनकर दिखाओ, जरा मैं भी देखूं कि तुम उसमें कैसी लगती हो। मनाल ने बड़ी बड़ी आंखें करके उसे घूरा। आदित्य उसके पास आ गया और बोला, ये बहुत गलत है जो तुम मुझे यूं घूरती हो, लगता है जैसे मैं तुम्हारी आंखों में डूब जाऊंगा। वैसे तुम्हारी आंखें हैं भी बहुत खूबसूरत। मनाल मन ही मन सोच रही थी, कितने दिन से सब नॉर्मल चल रहा था, आज फिर से इन्हें रोमांस का दौरा पड़ गया है, बिल्कुल शादी के शुरुआती दिनों जैसा बिहेव कर रहे हैं। वो पीछे हटने लगी। आदित्य ने उसके दोनों हाथ दीवार से टिकाए और बोला, वैसे दूसरों को बस में करने का टैलेंट तुम्हारे खानदान में जन्मजात होता है क्या, या तुम लोग इसकी ट्रेनिंग लेते हो? जो भी सामने आता है उसे अपनी मुट्ठी में कर लेते हो। मनाल को कुछ समझ नहीं आया कि आदित्य किसकी बात कर रहा है, कहीं कहीं ये कोई नशा वशा करके तो नहीं आ गए। वो सोचने लगी, कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। असल में आदित्य क्या कहे, उसकी बहन निशा उसके साले पर फिदा हो रही है, और उसका साला, वो निशा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये मत पहनो, वो मत पहनो, वो भी मान रही है। जबकि एक मनाल है जो उसकी कानूनन पत्नी है, मगर उसकी एक भी बात नहीं मानती। मैं वो आदित्य हूँ, उसने मन ही मन सोचा, जिसका एक फैसला बिजनेस की दुनिया में तूफान ला देता है, लेकिन मेरी बीवी मेरी बात सुनने को राजी नहीं। मैं उससे बस एक नाइटी पहनने को कह रहा हूँ इतने टाइम से। आदित्य ने मनाल के दोनों हाथ दीवार से हटाए और फिर उसके गले में बाहें डाल दीं। धीरे से कान में बोला, बीवी तुम्हारे 2 महीने पूरे होने में कितना टाइम बचा है, मुझे तो लग रहा है बहुत टाइम हो गया है। उसके मासूमियत से भरे लहजे और आंखों की बेचारगी देखकर मनाल ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। वो उसकी आंखों में डूबती चली गई। फिर आदित्य ने उसकी गर्दन से हाथ हटाए और बेड पर बैठ गया। मनाल, जब मेहर फैक्ट्री का काम ठीक से संभाल लेगा, तुम फ्री हो जाओगी तो हम दोनों छुट्टी लेकर घूमने चलेंगे, कहीं दूर, बस तुम और मैं। ठीक है, मनाल बोली, महाराज यही कह रहा था। दीदी, बस 1 महीना और फैक्ट्री में साथ रहिए, मॉम भी कह रही थी अब मनाल को उसकी गृहस्थी संभालने दो। नानी की वसीयत और आदित्य का इशारा। बिल्कुल सही कहा मम्मा ने, आदित्य मुस्कुराया। अब हमें नानी की वसीयत की शर्तें भी तो पूरी करनी है। ऐसे कैसे होंगी वो शर्तें पूरी, मनाल को पहले समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में जब उसे आदित्य के इशारे का मतलब समझ आया तो उसने सिर हिलाते हुए कहा, इसका कोई इलाज नहीं है, घूम फिरकर बात वहीं ले आते हैं। वो अलमारी से 2 ब्लैंकेट्स निकालने लगी, एक आदित्य के लिए और एक अपने लिए। ब्लैंकेट्स देखकर आदित्य ने मन ही मन सोचा, कोई बात नहीं, जितने मर्जी अलग अलग ब्लैंकेट निकाल लो, सोऊंगा तो मैं तुम्हारे ही ब्लैंकेट में और तुम मेरी बाहों में। आदित्य को मुस्कुराते देख मनाल ने एक आईब्रोज का कर नीचा। क्या हुआ? आदित्य ने बस मुस्कुराकर हाथ से इशारा किया, कुछ नहीं। क्या बताए वो अपनी बीवी को, जिस लड़के पर कॉलेज में लड़कियां मरती थी आज भी मरती हैं, प्लेबॉय कहलाता था वो, आज अपनी बीवी को नहीं मना पा रहा, बेचारा आदित्य।